महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना में हमें भगवद गीता का 15 अध्याय जो है पारायण करना है, हमें चौरागे पुरुषाष्टकम पारायण करना है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में से 14वां अध्याय ब्रह्मा की स्तुति का पारायण करना है और हो सके उतना कृष्ण लीला पे चर्चा करनी है। तो अगर हम 10वां स्कंद पूरा चर्चा करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन गोविंद दामोदर स्तुति के जो 71 श्लोक है उसमें संक्षेप में भगवान की अलग अलग लीलाओं की चर्चा है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे बिल्व मंगल ठाकुर कौन है और कैसे उन्होंने इतने सुंदर भजनों की रचना की। तो बिल्व मंगल ठाकुर एक ऐसे संत थे जिनका जन्म त्रिशूर नामक एक गांव में केरला में हुआ था और वो बड़े ही संपन्न परिवार से, एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मण परिवार में होने के बावजूद भी बहुत सारी बुरी आदतें थी उनकी और उसमें से सबसे बड़ी बुरी आदत थी वो वेश्याओं के साथ संपर्क में रहते थे और वेश्याओं के साथ संबंध बनाते थे। तो ऐसी ही एक वेश्या थी चिंतामणि, जिसके साथ बिल्व मंगल ठाकुर का जो है बहुत विशेष संबंध था और इतना विशेष था कि वो उसको देखे बिना जो है एक दिन भी रह नहीं पाते थे। और श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में ये कहानी बताते हैं कि कैसे एक दिन बिल्व मंगल ठाकुर के जो पिताजी हैं उनका देहांत हो जाता है और जब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है तो वो जो क्रियाकर्म चल रहे हैं वो क्रियाकर्म जितने देर चल रहे हैं वे उतने देर भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं चिंतामणि को मिलने के लिए। तो वहां पे जितने ब्राह्मण हैं वो उनको डांट रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ये सारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो मुझे जाना है। तो जितना जल्दी हो सके वो क्रियाकर्म खत्म किए और वो चिंतामणि के पास भागते हैं। अब चिंतामणि सोचती है कि आज तो उनके पिता का देहांत है तो वो जरूर नहीं आएंगे, तो वो जो है अपना कमरा बंद करके सो जाती है। अब चिंतामणि का जो घर है नदी के उस पार है, अब उसको नदी क्रॉस करके जाना है और जब तक कि उनके पिताजी का सब क्रियाकर्म हो जाता है काफी अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है, तूफान है, एकदम जो है पूरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन वो तो नहीं रह सकते, उनको तो जाना ही है। तो जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे उनको कोई नाव दिखाई नहीं देती है, तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि एक मृत शरीर तैर रहा है वहां पे। तो उस मृत शरीर के ऊपर में, उस डेड बॉडी के ऊपर में वो बैठ जाते हैं और तैरते तैरते पहुंच जाते हैं। जब चिंतामणि के घर पहुंच जाते हैं तो देखते उसका जो घर है वो 4 फ्लोर 4 माला का है और वो ऊपर के माला में रहती है। तो अब सोचते कि जाए तो कैसे जाए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी, नीचे के द्वार से तो अंदर जा नहीं पाएंगे। तो सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, किसी भी तरह से ऊपर चढ़ जाता हूं और खिड़की से अंदर घुस जाऊंगा चिंतामणि के कमरे में। अब ऊपर चढ़े तो कैसे चढ़े, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी रस्सी लटक रही है, तो एकदम उसने रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ के चिंतामणि के कमरे में कूद गए। अब चिंतामणि उनको देख के आश्चर्य कि भाई तुम आए कहां से, तो बोले तुमने रखी होगी शायद मेरे लिए रस्सी, तुम मेरे इंतजार कर रही थी क्या, तुमने मेरे लिए रस्सी रखी, मैं रस्सी पकड़ के आ गया। चिंतामणि एकदम भागी, उसने दरवाजा खोला, खिड़की खोली कि कहां है रस्सी, तो देखा कि कोबरा सांप एक जो है लटक रहा था। तो चिंतामणि आश्चर्य हो गई कि आपको समझ में नहीं आया कि वो सांप है, तो आप मेरे मोह में इतने पागल हो गए हैं कि आपको सांप भी रस्सी दिखाई दे रही है। और तब चिंतामणि एक बहुत सुंदर बात बोलती है, कहती है कि आपको मेरे प्रति इतना मोह क्यों है, इस शरीर के प्रति जो मल मूत्र से बना हुआ है, इस मांस के लोचे पे आपकी इतनी आसक्ति है, अगर इतनी आसक्ति भगवान के ऊपर होती तो आप बड़े संत बन जाते। और जब ये बात वो बिल्व मंगल ठाकुर सुनते हैं, अकस्मात उनके हृदय में कुछ होता है और वो बोलते ये तुमने सही कहा, मैं इतना आसक्ति अगर भगवान पे लगाता तो शायद मुझे भगवान मिल जाते। तभी का तभी वो वहां से निकल पड़ते हैं कि मैं चला वृंदावन की ओर। अब जब हम एज डिवोटीज ये कथा सुनते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि एक छोटा सा वाक्य ने किसी की जिंदगी बदल दी, इतना पावरफुल। हम लोग तो आज इतने सालों से भागवतम प्रवचन सुन रहे, हमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। माँ बाप बच्चों को इतना साल से प्रवचन देते कि भैया तुम जितना समय व्हाट्सएप और फेसबुक में लगा रहे हो उतना पढ़ाई में लगाते तो IIT क्रैक हो जाएगा, जाके घर में डायलॉग बोल के देखो कुछ अफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही बात जब चिंतामणि ने बोली है तब इमीडिएटली उनका हृदय चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्यों चेंज हो गया? चिंतामणि बहुत बड़ी संत थी, बहुत प्योर थी, क्यों चेंज हो गया? हाँ सही बात, सही बात, एकदम सटीक बात। देखिए जैसे कभी कभी हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और अगर हमें कोई उठाए तो हम नहीं उठेंगे, बहाना बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी नींद पूरी हो चुकी है, बस अब हम उठने ही वाले हैं, और तब अगर हमें कोई उठाए तो हम एकदम उठ जाते हैं। तो जब कोई जीव जो है अपने पूरे कर्म, जो उनके बुरे कर्म हो वो भोगत चुका है, और जब उनके जीवन में पुण्य का उदय होता है, तब छोटी सी कही हुई बात भी दिल में घर कर जाती है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि इतने सारे प्रवचन सुने हो, शायद कभी कोई अफेक्ट न हो, कभी ऐसा होता है कि किसी का एक प्रवचन सुनने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। बस हमें लगता है कि मुझे ये ही करना है, अब मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ऐसा ही नहीं कि अरे स्पीकर बहुत पावरफुल है तो कैसे हो गया, ये भी हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में वो खुद इतने प्योर थे कि इतनी बार बहुत लोगों से बातें सुनी होगी लेकिन जीवन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब वही बात प्रभुपाद ने कही तो बस लाइफ बदल गई। तो कभी कभी इतने सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है। कभी कभी ऐसा है कि स्पीकर की जो भक्ति है वो हमें ट्रांसफर हो जाती है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म और पुण्य उदय जब होता है, जब हमारा, और जब कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व में किसी ने अच्छे कर्म किए होते हैं और अब उसका जो है समय आ गया है, या उसने ऐसे कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे उसको भगवत भक्त के संपर्क में आने का अवकाश मिलने वाला है। अब ये बिल्व मंगल ठाकुर की भी जो पूर्व जन्म की कहानी मैंने परम पूज्य महाविष्णु महाराज से सुनी थी, वो बता रहे थे कि कैसे ये बिल्व मंगल ठाकुर अपने पूर्व जन्म में एक सन्यासी था और वो भाव के स्टेज में था, बहुत ऊपर की स्टेज में, और उसका सेवा क्या था, भागवत कथा करता और सबको प्रसाद खिलाता, बस यही, और निष्काम और कोई कामना नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि फंड्स कम पड़ गए, उसको भागवत सप्ताह करनी थी, सबको प्रसाद खिलाना था लेकिन पैसे नहीं थे, तो दान के लिए घूमता घूमता श्मशान पहुंच गया। श्मशान में उसने देखा क्या हो रहा है, एक राजा की अविवाहित बेटी 18 साल की राजकुमारी मर गई है, तो अब राजा की बेटी है तो उसके जो मृत शरीर है उसको पूरे गहनों से सजाया हुआ था और उसको श्मशान ले जाए थे। अब उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि वो तो जलेगा नहीं। तो फिर जब सब वहां से चले गए राजा का परिवार, तब वो राजकुमारी से वो सारे निकालने लगा जो जो वहां पे पड़े हुए थे जलाने के बाद। तो जब वो सारे आभरण वो लेने लगा तब राजकुमारी की जो आत्मा जो अभी भी उस शरीर के मोह में ऊपर घूम रही थी वो बोलती है बिल्व मंगल ठाकुर को कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत अड़ाओ, तुमको क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए ना तुम्हारा प्रोग्राम करने के लिए, तुम ऐसे करो मेरे पिताजी के पास जाओ और उनको बोलो कि मैंने तुमको भेजा है और मैं जहां पे सोती हूं मेरे बिस्तर के नीचे एक डब्बा है जिसमें बहुत सारी मेरी मनपसंद ज्वेलरी है, सारे ज्वेलरी है, वो तुम ले लो दान में। तो बिल्व मंगल ठाकुर गए, राजा से बात किया कि ऐसे आपकी बेटी ने मुझे यहाँ भेजा है, उनके बिस्तर के नीचे ये डब्बा है, आप मुझे दे दीजिए। राजा ने खुशी खुशी दिया, ठीक है अच्छे काम में उपयोग करो। तो वो सारे लेके बेच बाज के फिर से भागवत जो है उन्होंने भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज की, सबको प्रसाद दिया, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ गया। तो फिर गए स्मशान में और इस बार क्या किया, जो उस राजकुमारी का हीरो का हार था वो उसने लिया और बेचने के लिए गया। तब राजकुमारी की जो आत्मा थी उसने बिल्व मंगल ठाकुर को श्राप दिया कि तुमको बोलने के बावजूद भी तुमने मेरी चीज छुई, मैंने पहले ही मना किया था, तो क्योंकि तुमने ऐसा किया अगले जन्म में तुमको एक ऐसा जन्म मिलेगा जहां पे तुम्हें महिलाओं के प्रति विशेष आकर्षण रहेगा, तुम एक वुमेन हंटर बन जाओगे। तो अब ये कितने बड़े सन्यासी थे, भाव के स्टेज में थे, उसको ऐसा श्राप दिया गया। तो इसीलिए इस जन्म में वो क्या कर रहे थे, वेश्याओं के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जब उनकी श्राप की अवधि खत्म हुई और चिंतामणि के ये मुंह से ये जो वाक्य निकला उसके दिल को छू गया, तो वो चल गए, चल पड़े वो वृंदावन की ओर। अब जब वो वृंदावन की ओर जा रहे थे तो उन दिनों में तो गाड़ियां स्कूटर वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो चल के जाना है, रास्ता में रुकना है, किसी के घर में भिक्षा करना है, खाना है, बस ऐसे ही चलना है। तो एक दिन एक ब्राह्मण के घर में रुक गए, प्रसाद खाए, रात को वहां पे रुके। सुबह जब उठा तो ब्राह्मण की पत्नी नहा धो के अपने बाल सुखा रहे थे। अब इसकी जो आदत है उसके सुंदर बाल देख के, केश देख के उसको फिर से आकर्षण हुआ, मन में एक बुरा विचार आया, कितनी सुंदर है, खत्म। इतना ऐसा विचार आ गया, वो भी ब्राह्मण की पत्नी। अभी हम पिछले क्लास में बता रहे थे कि सात माँ होती है, तो ब्राह्मण की पत्नी भी माँ है, तो माँ के ऊपर ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। विचार आने के बाद उसको लगा कि ये मेरी गलती है, तो इमीडिएटली गया ब्राह्मण की पत्नी के पास और हाथ जोड़ के बोला कि माता आपसे एक विनती है। बोला कहिए। बोला ये जो स्त्री लोग यहाँ पे पिन वगैरह लगाती है ना अपने बाल को फिक्स करने के लिए, मुझे दो पिन चाहिए, हेयर पिन। बोले तुम क्या करोगे? बोलता मुझे चाहिए। तो दो हेयर पिन जो है बिल्व मंगल ठाकुर के हाथ में देती है और फिर वो दोनों पिन लेके जो है वो अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं और अंधे हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि भगवान का अच्छा भक्त बनूं, लेकिन मेरी ये जो दो आंखें हैं ये मुझे हर वक्त माया की ओर आकर्षण कर रही है। ये देखो अच्छी चीज, ये देखो अच्छा, ये देखो भोग की वस्तु, तो मेरे और कृष्ण के बीच में ये दोनों ही आ रही है ना, इसको निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसने दोनों आंखें फोड़ ली और फिर वो वहां से जो है भगवान का भजन करते करते वृंदावन पहुंच गए। अब देखिए भगवान कृष्ण का ये स्वभाव है, जैसे ही कोई उनको पूर्ण रूप से शरणागति ले लेते हैं, अब उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उस भक्त को देखना। अब तो उसने आंखें भी फोड़ ली थी कि उसको कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो अब ठाकुर जी क्या किए, छोटे से बाल गोपाल के रूप में आए और क्या करने लगे, उसको मदद करने लगे। तो बिल्व मंगल ठाकुर के लिए रोज दूध लेके आते थे। बिल्व मंगल ठाकुर ने पूछा कि लाला तुम कौन हो, मैं जब से यहाँ व्रज में आया हूँ मैं देखता हूँ तुम रोज मेरे लिए दूध लाते हो। तो भगवान कृष्ण बोले कि कुछ नहीं, मैं व्रजवासी हूँ, गाय चराने आता हूँ, मैं आपको देखा हूँ बाबा आप भूखे बैठे हो इसलिए आपके लिए रोज दूध लाता हूँ। तो बिल्व मंगल ठाकुर बहुत खुश, रोज वो दूध पीते और भजन करते और इतना सुंदर भजन करते कि उसके भजन सुनने के लिए ठाकुर जी बैठ जाते। अगर आपने देखा होगा एक बहुत फेमस पिक्चर है जहाँ पे आप इंटरनेट में भी देख सकते हो, जहाँ पे आप दिखाई देगा एक बूढ़ा आदमी वीणा लेके बैठा है और भगवान उसके पास में ऐसे बैठ के उसकी भजन सुन रहे हैं, आप देख सकते हो इंटरनेट में। यहाँ पे भी हमारे वैसे इस गोविंद प्रभु ने लगाया है बिल्व मंगल ठाकुर का छवि और भगवान उसके भजन सुन रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ बिल्व मंगल ठाकुर चलते चलते कुएं में गिर गए। सूखा सा कुआ था, पानी वानी कुछ नहीं था, अंदर में खड्डा था। अब निकालेगा कौन उनको बाहर? अब वो लल्ला लल्ला चिल्लाने लगे। अब ये ठाकुर जी आए और उन्होंने हाथ दिया और बिल्व मंगल ठाकुर को ऊपर निकाला। अब तक क्या हुआ था, बिल्व मंगल ठाकुर को भगवान ने छुआ नहीं था, वो दूध देते थे। अब क्या किया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे भगवान ने उसका हाथ पकड़ा वैसे बिल्व मंगल ठाकुर बोला, कौन है, कौन है ये? कृष्ण, ये तो तुम हो, ये तुम हो ना कृष्ण? भगवान जवाब नहीं दे रहे और बिल्व मंगल ठाकुर जो है उसका भगवान का हाथ एकदम पकड़ लिए, बोले ये तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो। वह कृष्ण हंसने लगे और उसका हाथ छुड़ा के भाग गए। और फिर तब जो है बिल्व मंगल ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, हाथ छुड़ाई के जय रहो हो, हृदय से जाओ तो मानो, हृदय से जाओ तो मानो। बोलते हैं अच्छा मैं बूढ़ा हूँ, अंधा हूँ, चल नहीं सकता, तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकता, इसलिए मेरे हाथ छोड़ के तुम भाग गए, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे हृदय के अंदर में जो मैंने तुमको बांध लिया है वहां से कैसे भागोगे? अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो ना, मेरे हृदय से भाग के दिखाओ तब मानू कि हाँ वे तुम में भी कुछ जान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भजन उन्होंने रचना की है। और प्रोपा जी के एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, वहां प्रोपा जी ने ऐसा कहा कि बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन में 700 साल तक रहे, 700 ईयर्स। और उन्होंने सोमगिरी नाम के एक आचार्य से दीक्षा भी ली थी और उनका दीक्षा का नाम दिया गया था लीला सुख। लीला सुख, सुख माने तोता और लीला सुख माने वो तोता जो भगवान कृष्ण की लीला सुनाता है, लीला सुख। तो उनको लीला सुख का नाम दिया हुआ था। और अंत समय तक जो है वो भगवान की अलग अलग सुंदर भजन रचना करते रहे। और बाद में वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में उनकी समाधि है। अभी भी हम वृंदावन जाए तो गोपीनाथ बाजार में बिल्व मंगल ठाकुर की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। तो इस दौरान जब उन्होंने बहुत सारी भजनों की रचना की होगी, पर हमें जो इमीडिएटली अवेलेबल है वो है कृष्ण करणामृतम, गोविंद दामोदर माधवेति स्तुति है और चौरागे पुरुषाष्टकम। ये तीनों हमें इमीडिएटली अवेलेबल है। और आज हम पहले चौरागे पुरुषाष्टकम पारायण करके उसका मतलब जानते हुए, अगर समय हमारा साथ दे तो गोविंद दामोदर स्तुति के भी कुछ श्लोक करेंगे और आने वाले संडे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। व्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चडकुला चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो जब भगवान उनके हाथ छोड़ के चले जाते हैं तब ये गाने की रचना करते हैं। यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर बोल रहे हैं व्रज प्रसिद्धम, पूरे वृंदावन में तुम फेमस हो। क्यों फेमस हो? क्योंकि तुम चोर हो। तुम क्या चोरी करते हो? माखन की चोरी करते हो। और वहीं खत्म नहीं है, तुम ऐसे चोर हो, नेक्स्ट लाइन में बोलते गोपांगनाचा, गोपियों के कपड़े भी चोरी करते हो। हम भागवत में पढ़ते हैं ना, जब गोपियां व्रत करती है कात्यायनी व्रत और यमुना में सुबह सुबह नहाने जाती है तो भगवान उनके कपड़े चोरी कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, तुम माखन ही चोरी नहीं करते हो, गोपिकाओं के वस्त्र ही चोरी नहीं करते हो। भक्तों ने जो पाप किए हैं इतने जन्मों से, अनेक जन्मों के, वो सारे पाप भी तुम चोरी कर लेते हो। जो तुम्हारा भक्त बनता है उसके सारे पाप भी तुम चोरी कर लेते हो। उसके बाद बोलते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवम बुधाश्यामल कांति चोरम पादाश्रितानं च समस्त चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोलते हैं कि राधा रानी का हृदय तुमने चोरी किया श्री राधिका। और क्या चोरी किया तुमने? जब बारिश आने वाली होती है तो जो बादल होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो थोड़े से काले काले लगते हैं, तो उस बादल का रंग भी तुमने चोरी करके अपने शरीर पे डाल दिया। तो तुम कहीं सब कुछ चोरी करते, तुम्हारे चोरी करने की आदत है, उनका रंग भी तुमने चोरी कर लिया। और फिर एक बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं पादाश्रितानां च समस्त चोरम, और जो तुम्हारी शरणागति लेते हैं, जो तुम्हारे पाद पद्म की शरणागति लेते हैं, उनका तो तुम सब कुछ चोरी कर लेते हो। अगर आपको याद हो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको आपके परिवार से, आपके पत्नी से, बच्चों से प्यार हो तो कभी केसी घाट मत जाइएगा चांदनी रात में, क्योंकि चांदनी रात में केसी घाट के पास कदम्ब के झाड़ के नीचे ये जो त्रिभंग रूप में कृष्ण वेणु बजाते हुए अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर आप कभी वापस घर नहीं लौटोगे। आप बोलोगे मुझे यहीं रहना है। तो यही बता रहा है ना कि पादाश जो एक बार भगवान के पाद पद्म का शेल्टर ले ले, उसका तुम सब कुछ चोरी कर लेते हो। उसका मन, उसका ध्यान, अब तुम्हारे सिवाय उसको कहीं भी मन नहीं लगता है, समस्त चोरम। उसके बाद बोलते हैं अकिंचनी कृत्य पादाश्रितम ये करोति भिक्षुम पति गेहहीनम केनापि अहो भीषण चोर इद्री दृष्टाश्रुतो वा न जगत्रयापि। बोलते हैं कि जो तुम्हारा भक्त बनता है उसको तुम भिखारी बना देते हो, भिक्षुक बना देते हो, उसका सब कुछ तुम ले लेते हो। अब ये बात जब भक्त सुनते हैं तो डर जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत बार इसके बारे में बताए कि इसको बोलते हैं कृष्णा स्पेशल मर्सी। अगर कृष्णा आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपका बिजनेस अनसक्सेसफुल होगा, आपकी मैरिज लाइफ बेकार की होगी, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको जीवन में कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कृष्ण के सिवाय कोई और चीज में शांति मिलेगी ही नहीं। ये है कृष्ण की स्पेशल मर्सी। कितने लोगों को चाहिए ऐसी स्पेशल मर्सी? माता जी सब बोलिए भी मत, हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल मर्सी काफी है, स्पेशल मर्सी नहीं चाहिए। जिसको कृष्ण बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके जीवन ऐसा होता है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि उनके सिवाय वो भक्त किसी और पे आसक्ति ना रखे, किसी और को प्यार करे ही ना। ओनली हिम, मोनोपोली गॉड है, बहुत ही पोसेसिव गॉड है। प्यार करो तो सिर्फ मुझसे, और किसी से तुम प्यार नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, बहुत प्यार देने वाली पत्नी या पति, बहुत अच्छे बच्चे जो तुम्हारी हर बात सुने, कोई प्रॉब्लम ही ना हो तुम्हारे जीवन में, तो तुम क्या बोलोगे? जाएंगे कभी मंदिर? अभी तो आई एम सो बिजी, ब्यूटीफुल फैमिली, ड्रीम हाउस, कोई समस्या नहीं है, जाएंगे कभी मंदिर? समस्या होने से ही मंदिर आने का दिल करता है, समस्या नहीं होने से आप कितने बिजी हो जाते हो अपने लाइफ में। तो इसीलिए जो स्पेशल मर्सी जो है भगवान कुछ कुछ लोगों को चुन चुन के देते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, सातवीं कक्षा में, और इस्कॉन हैदराबाद में भागवतम क्लास चल रहा था, और किसी महाराज ने ऐसी बताई, तो मैं क्लास के बाद मैंने क्वेश्चन पूछा कि महाराज जी ऐसी स्पेशल मर्सी भगवान मुझ पे तो नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए स्पेशल मर्सी। मैं बहुत खुश हूँ, लविंग पेरेंट्स है, बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली है, पर मैं भगवान की भक्त बनना चाहती हूँ, पर ऐसा तो नहीं होगा कि बनने के बाद भगवान मेरे से माँ बाप छीन ले, ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं होगा? तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैंने बोला सेवेंथ में हूँ। तो बोला जब तुम एग्जाम लिखने जाती हो तो तुमको सेवेंथ का पेपर देते हैं कि टेंथ का पेपर देते हैं? सेवेंथ का पेपर ही देंगे, टेंथ का पेपर क्यों देंगे? तो बोला इसलिए चिंता मत करो, तुम जो लेवल की भक्त हो तुमको उतना ही मर्सी देंगे। तुम अब उतने लेवल में आई नहीं हो तुमको स्पेशल मर्सी देने के लिए, तुम जिस लेवल में हो तुम उतना ही, जिस दिन तुम स्पेशल मर्सी लेने के कैपेबल हो जाओगे उस दिन देंगे स्पेशल मर्सी, लेकिन अब नहीं देंगे। तो चिंता मत करो, तुम जो क्लास में हो उसी क्लास का पेपर तुमको मिलेगा, तुम्हारी जब उतनी मेच्योरिटी बढ़ेगी तब का तब देखा जाएगा। तो ये बात है भगवान की जो ये स्पेशल मर्सी है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता ये मर्सी के बारे में। एक बार कृष्ण और अर्जुन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो बीच में घना जंगल था, तो अब रात को कहाँ आश्रय ले, तो देखा एक छोटा सा झोपड़ा था, उसमें एक बुढ़िया थी और एक गाय को जो है वो देखभाल कर रही थी। तो रात को वो लोग वहां रुक गए। अब इस बुढ़िया ने कृष्ण को और अर्जुन को बहुत अच्छे से सेवा की, उनको अच्छा प्रसाद खिलाया, उनको गाय का दूध पिलाया और बहुत अच्छे से सेवा की। और जब वो लोग वापस चले जा रहे थे तो भगवान को विदा कर दिया उस बुढ़िया ने, और कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पे चले गए। अब रास्ते भर अर्जुन को मन में चुभ रहा था कि भगवान ने इस बुढ़िया को कुछ दिया क्यों नहीं, कि ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो तो सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो उसने सोचा इतना मन में क्यों रखे, पूछ लेता हूं। तो बोला कृष्ण मुझे एक डाउट है, एक संदेह है, आप तो बोलते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई आपको एक पत्ता दे पानी दे आप खुश हो जाते हो, अब इस बुढ़िया ने आपकी इतनी सेवा की आपने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो भगवान ने बोला तुमको किसने बोला मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने दे दिया जो देना था। तो अर्जुन ने बोला बताइए क्या दिया आपने, क्या दिया उसको, मतलब सोना चांदी क्या दिया? तो भगवान ने बोला कि मैंने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया है अब दो तीन दिन में उसकी गाय मर जाएगी। अब अर्जुन ने बोला ये आशीर्वाद है कि ये श्राप है, क्योंकि वो इतनी गरीब है, उसके पास में वो गाय के सिवाय कुछ भी नहीं है, और आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि गाय मर जाएगी, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो कृष्ण ने बोला क्योंकि उसकी जो है मृत्यु पास में आ रही है, अब अनदर 10-15 डेज में जो है वो मरने वाली है, और उसको गाय के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो अगर मैं इस गाय को नहीं मारूंगा तो मरते दम तक क्या है वो गाय को याद करती रहेगी। और भगवत गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, और अगर वो मरते हुए गाय को याद करेगी तो अगले जन्म में उसको गाय का शरीर मिलेगा। तो अब मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि वो गाय मर जाएगी, अब जब गाय ही मर गई तो उसको किसी पे और आसक्ति रखने का कोई चांस नहीं है, तो वो मेरे बारे में स्मरण करेगी और क्या होगा फिर मैं उसको गोलोक धाम में जगा दूंगा। तो भगवान के जो अजीबोगरीब तरीके होते हैं, वो हमारी छोटी सी बुद्धि में नहीं समझ पड़ती हमको। पर हमें एक विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे श्रेय अभिलाषी है, वो मेरे वेल विशर है। अभी अगर मुझे कोई चीज बुरी लग रही है कि ये ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो ठीक है, भगवान न्याय करते हैं, उनको अन्याय करना नहीं आता है। तो कुछ उनका प्लानिंग होता है जो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा हो। तो यह है भगवान की स्पेशल मर्सी। तो जो उनको प्रार्थना करते हैं वो क्या है, भिक्षुक बना दिया भगवान उनको, बता रहे बिल्व मंगल ठाकुर। यदि नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारन्नपि पापरासिन आश्चर्य रूपो ननु चोरैर्दृग् दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि। ये बोल रहे हैं कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है, अगर कोई एक बार भगवान का नाम ले ले तो अगर उसने इतने पाप किए हो जितना कि एक गिरी, गिरी माने पहाड़ जितने भी अगर उसने पाप किए हो, एक बार भगवान का नाम लेने से वो सारे पहाड़ जितने पाप सब धुल जाएंगे। ऐसे चोर है भगवान। और फिर वो लास्ट लाइन में बोलते हैं कि दृष्टा श्रुतोवा न मया कदापि, न मैंने ऐसे चोर के बारे में कभी सुना, न मैंने ऐसे चोर को कभी देखा। आश्चर्य हो जाता हूं मैं कि ऐसा भी कोई चोर हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं धनं च मानं च तथा इन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव पालायसे कुत्रजितोऽद्य चोरा त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्धा। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। बोलते हे भगवान, तुमने मेरा धन ले लिया, मेरा मान ले लिया, धनं च मानं च तथा इन्द्रियाणि। एक्चुअली इधर बिल्व मंगल ठाकुर अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिया ले ली ना भगवान ने, बिल्व मंगल ठाकुर की आंखें भगवान के लिए उसने फोड़ दी। तो बोला कि मैं जो इतना धनी था, हाँ, मेरा धन मेरा मान, अब मैं एक भिक्षुक बन गया, मुझे आपने ऐसा बना दिया। सी, जब एक बार कोई भक्ति जीवन में आ जाता है तब जीवन में आनंद की परिभाषा बदल जाती है। पहले उसको जो चीज़ आनंद देती थी, अब उसको एक अलग सेट ऑफ चीज़ आनंद देती है। और स्पेशली जब आप भक्त बन जाओ, आपको सब बोलने लगेंगे कि भैया तुम इतने अबनॉर्मल क्यों हो गए हो, पहले पार्टी में आते थे, शादियों में आते थे, अब संडे होने से बोलेगा मंदिर जाऊंगा, छुट्टी होने से बोलेगा वृंदावन जाऊंगा, खाने के लिए बोलने से बोलेगा मेरा उपवास है, तुम इतने अबनॉर्मल क्यों हो गए, पहले तुम नॉर्मल थे एकदम, अब अबनॉर्मल क्यों हो गए। अब हमारी आनंद की परिभाषा बदल गई है, अब हमें कुछ और चीज़ आनंद देती है। हमें यात्रा आनंद देती है, हमें भगवान का प्रसाद लेना आनंद देती है, हमें भगवान के भक्तों के साथ संग करना आनंद देती है। हमारी हर चीज़ अभी बदल जाती है, हमारी इंद्रियों को भी अब हम कुछ और तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का प्रसाद लेना। मुझे याद है प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे कि एक बार वो कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, कोई ऑफिस में, बड़ी सी ऑफिस थी। तो वो किताब लेके गए और किसी ऑफिसर को समझाने लगे कि प्रभु जी ये किताब लीजिए। तो ऑफिसर ने बोला देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि देखिए इसका तो कोई पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ एक बार हाथ में पकड़िए। तो पकड़ लाने के लिए कुछ बुक्स जो है उसके टेबल पे रख रहा था, और ये ऑफिसर जो चिल्लाने लगा बोला मेरे टेबल पे नहीं, इसको यहाँ रखना नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छूना नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो ये भक्त बोल रहा है कि आप इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो जैसे कि कोई टाइम बॉम्ब, टेबल पे रखने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि किसको छूने से कोई रोग हो जाएगा। तो उसने बहुत सुंदर बात बताई, उसने बोला कि देखो तुम मेरे पास में ये टेबल देख रहे हो, ये चेयर देख रहे हो मेरे कोलीग का, बोला हाँ खाली है ना, हाँ खाली है। तो पिछले साल तुम्हारे जैसा ही एक भक्त आया था, उसको ये सारे किताब दी थी, अब इस साल वो रिजाइन करके वो भी जो रास्ता रास्ता में किताब बेच रहा है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, इसलिए मुझे इस किताब से डर लगता है, क्या है इसमें मुझे पता नहीं, लेकिन वो सीट खाली है। और वो मुझे मोटिवेट करती है कि इन लोगों से दूर रहो, तो ये किताब मेरे टेबल पे नहीं, ना मुझे छूना है ना मुझे देखना है, तुम यहां से बाहर जाओ। अब हमारे अगर जीवन देखो तो ऐसा ही है, कहां कौन कैसी फैमिली से आते हैं लेकिन एक बार जब इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो एक परिवार बन जाता है। और यहाँ पे कोई धनी हो या कोई गरीब हो या कोई हो, सब सम्मान बन जाता है। और धनी से धनी इंसान भी जो है यहाँ आने के बाद भिखारी बन जाता है। अब धनी से धनी आदमी होगा लेकिन वो आपको रोड पे दिखाई देगा भगवत गीता सेल करते हुए, ले लो, और सारे उसका अपमान करते हुए चले जाएंगे। तो धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि, एक बार भगवान का भक्त बन गया मतलब सारा मान धन वो सब गया, तेल पीने हैं गया। अब यहाँ ना कोई मान ना कोई धन का अभिमान, बस एक ही, इसको कैसे आनंद देना है, कृष्ण को कैसे आनंद देना है, कैसे उनको खुश करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। तो यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर ये बता रहे कि धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि, सब कुछ तो मेरा तुमने ले लिया, और उसके बाद अच्छा सब कुछ लेने के बाद अब भाग जाओगे, अब मैं तुमको पकड़ भी नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ये तो फेयर नहीं है। मेरा सब कुछ छीने के बाद कम से कम मुझे तुम्हारा एसोसिएशन तो दो, तुम वो भी चले जाओगे मुझे दिए बिना। उसके बाद में बोल रहे हैं, चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धाम्। यहाँ पे भगवान को बहुत सुंदर बात बोल रहे बिल्व मंगल ठाकुर, बोलते हैं कि तुम रस्सी तोड़ने में तो बहुत होशियार हो, रस्सी जो काटने में तुम बहुत होशियार हो। अगर यमराज जब हमें यमलोक ले जाता है तब गले में जो है यमपास बांधता है, वो यमपास इतना मतलब सख्त होता है, आप कितना भी कोशिश करो उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो यमराज जो है वो भैंसे पे बैठा रहता है और हमारे शरीर को वो जो यमपास से बांध के खींचता हुआ ले जाता है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर बोल रहे कि भैया तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, तुम यमपास बंधन आराम से यमपास को तुम काट सकते। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, लेकिन मैंने जो तुमको मेरे प्यार के बंधन में बांधा है ना, इसको तुम नहीं काट पाओगे। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, शायद तुम एक्सपर्ट होंगे रस्सियां काटने में, लेकिन मैंने जो तुमको ये रस्सी से बांधा है ना प्यार की और भक्ति की, इसको तुम नहीं काट पाओगे, मेरा चैलेंज है। उसके बाद बोलते हैं, मना मना से तमसा रसि घोरे कारागृहे दुखमये निबद्धा लाभा स्वहे चोर हरे चिराया स्वचोर्य दोषो चितमेव दंडम। अब बोल रहे हैं कि जो चोरी करता है उसको क्या करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। पर तुमने जो इतने सारी चोरी किए, मैंने तुम्हारा सारा गुना अभी तक जो तुमने जो जो किया मैंने तुमको बता दिया, अब तुमको जो है जेल में डालना पड़ेगा। अब जेल कैसा होता है, गंदा सा काला सा, ऐसा ही होता है ना जेल। अब हमारा हृदय कैसा है, गंदा सा काला सा, ऐसा ही है ना, सेम टू सेम जेल जैसा। इतनी मोह माया गंदे विचार से भरा हुआ, हमारा अज्ञानता से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ हमारा हृदय है। तो बोलते अब मैं क्या करूंगा, मेरे मन मंदिर में तुमको डाल दूंगा, यही तुम्हारा पनिशमेंट है क्योंकि तुम बहुत बड़े चोर हो। फिर बोलते हैं, कारागृहे वस सदा हृदय मध्ये मत भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चलं सान त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि सतंतरेपि सर्वस्य चोर हृदयं नहि मोचयामि। तो मैं आपको इस कारागार में रखूंगा और इस कारागार की स्पेशलिटी ये है कि बाहर के जो कारागृह होते हैं उसमें आपका एक टाइम लिमिट होता है, जो आपने जो जो गुना किया होता है उसका लिमिटेड टाइम के बाद आपको जेल से रिहा कर देते हैं। लेकिन मेरा जो ये जेल है उसमें से मैं आपको कभी भी नहीं निकालूंगा, चाहे कितने भी साल हो जाए, कितने भी प्रलय आ जाए, कोटि कितने भी हजारों हजारों वर्ष चला जाए, लेकिन हमेशा हृदय मध्य मेरा जो ये कारागार है मैं उसमें आपको बांध के रखूंगा और आप कभी इस कारागार से बाहर निकल नहीं पाओगे। श्री चौरागे पुरुषाष्टकम की जय। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग एवरी डे, ये पुरुषोत्तम महीना जो चल रहा है, रोज एक बार चौरागे पुरुषाष्टकम की पारायण करिए। सिंपल है, गाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, और अब आपको मतलब भी समझ में आ गया तो इसको आप और भाव से कर सकते हैं। तो कृष्ण कर्णामृतम, चौरागे पुरुषाष्टकम एंड गोविंद दामोदर स्तुति, जो बिल्व मंगल ठाकुर ने रचना की है। अब हम गोविंद दामोदर स्तुति शुरू करेंगे। मेरे पीछे दो दो लाइन आप गाइए और फिर हम उसका मीनिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अग्रे गुरु नाम अथ पांडवानां दुःशासनेना हृतवस्त्रकेशा नाम अथ पांडवानां दुःशासनेना हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्य नाथा गोविंद दामोधर माधवेति। बहुत सुंदर यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि जब वो सभा में जहाँ कुरु और पांडव बैठे थे वहां पे दुशासन जो है द्रौपदी के बाल पकड़ते हुए खींचते हुए उसको सभा में लेके आया, और जब उसकी साड़ी खींचने लगा तब द्रौपदी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। पहले तो कोशिश की अपनी मेहनत से उसको पकड़ने के लिए साड़ी के लिए, लेकिन दुशासन में 10,000 हाथियों की शक्ति थी तो अपनी साड़ी बचा नहीं पाई। वो फिर क्या किया, अपने पतियों की तरफ देखा कि कोई मदद करे, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा कि शायद घर के जो बड़े हैं वो मदद करें, लेकिन जब देखा कि कोई मदद नहीं करने वाला है तब क्या किया, दोनों हाथ छोड़ दिए। अब क्या फायदा पकड़ के, अब जो करना है भगवान करेंगे। और फिर द्रौपदी क्या बोलने लगी, गोविंद दामोधर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अब तो तुम्ही को बचाना है। बहुत सुंदर बात यहाँ भक्तों के समझने लायक है कि इस दुनिया में हमें कौन मदद कर सकता है, किस में उतनी शक्ति है। जब हम हमारी समस्याओं को कभी हम सोचते शायद ये हेल्प कर दे, शायद वो हेल्प कर दे, कोई नहीं मदद कर सकता। हमारे बहुत सारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सिवाय हमारी मदद कौन कर सकता है। जो बुद्धिमान है वो समझता है इस बात को। अगर आप देखो श्रीमद् भागवतम में 1.8.9 पहले स्कंद में प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती के 8वें चैप्टर में 9वां श्लोक, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए निकल रहे हैं और वो रथ पे बैठ जाते हैं, आसीन हो जाते हैं और सब उनको जो है फेयरवेल कर रहे हैं, तब उत्तरा भागती हुई आती है, भागती हुई आती है और भगवान को प्रार्थना करती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। बोलते हे महायोगी, देव देव जगतपते, ना अन्यम त्वद अभयम, ना अन्यम त्वद, यहाँ पे जितने लोग हैं कोई मेरी मदद नहीं कर सकते, ना अन्यम अभयम त्वद पाश्य, आप ही दे सकते हो अभयम, आप ही मुझे बचा सकते हो। और वहां पे क्या हो रहा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था उत्तरा के गर्भ की ओर परीक्षित को मारने के लिए, तो उत्तरा अगर चाहती, वहां पे उनके ससुर खड़े थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सारी आर्मी सब खड़े थे, लेकिन वो उत्तरा किसी को मदद नहीं मांगती है, वो भाग के क्या, पहले भगवान के पास जाते, हे कृष्णा तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे बताओ। कितनी बुद्धिमान है कि मेरे ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ नहीं काम करने वाला है, भगवान की मदद मुझे लेनी है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है भक्ति जीवन में कि कृष्ण के सिवाय हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, और अगर हम हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर हम कृष्ण से मदद मांग भी ले तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम मदद भी मांगते हैं लेकिन मांगने के साथ में सॉल्यूशन भी हम ही कृष्ण को दे देते हैं, देखो ये मेरा प्रॉब्लम है और ये मेरा सॉल्यूशन है, काइंडली ये सॉल्यूशन थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेना। अरे भाई तुम कौन हो सॉल्यूशन देने वाले, तुम प्रॉब्लम बोल दो, सॉल्यूशन वो अपनी तरह से देंगे। उनके पास में हजारों ऑप्शंस है, शायद तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, उनके पास हजारों ऑप्शन है, तुमको कैसे मदद करना है। लेकिन हम मदद मांगते भी है तो बहुत कंडीशनल है, हमारे लिए मदद भी वेल डिफाइंड, ऐसे करोगे तो ही मेरे लिए मदद है। मुझे कहानी याद आ रही है, एक बार श्रीनाथ जी भगवान के एक भक्त थे और वो श्रीनाथ जी से बहुत प्यार करते थे और भगवान से बात करते थे। तो एक बार उन्होंने भगवान से बोला, ये आप जो पूरा दिन ऐसा खड़े रहते हो ना, आप थक नहीं जाते क्या? मुझे कभी कभी लगता है कि आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, कभी मैं आपके जगह खड़े रह जाऊँ, काम तो कुछ रहता नहीं, बस खड़ा रहना है ना, ऐसा मैं खड़ा रहता हूँ, आप थोड़ा देर आराम करो। श्रीनाथ जी भगवान बोले, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सच भी बात है, पूरा दिन खड़ा रहता हूँ, तुम मेरे प्लेस में खड़ा रह जाओ, मैं आराम करता हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम कुछ मत करना, सिर्फ खड़े रहना। उसने बोला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे भी आप करते क्या हो, मैं ऐसे खड़ा रहना, मैं भी खड़ा ही रहूंगा। तो भगवान ने उसको चांस दे दिया, वो खड़ा रह गया भगवान के प्लेस में, भगवान आराम कर रहे हैं। अब एक आदमी आ गया, बहुत अमीर, श्रीनाथ जी भगवान का जय भगवान का जो नाम बोलते बोलते आया और बहुत सारा पैसा हुंडी में डाला। अब पैसा हुंडी में डालते डालते उसका मनी पर्स वो हुंडी के पास भूल गया और चला जा रहा था। अब ये जो हमारे डुप्लीकेट भगवान खड़े थे, उसका दिल किया बोलने के लिए कि बंदा तुम्हारा मनी पर्स भूल गए हो। तो उसको याद आया कि ओरिजिनल भगवान ने बोला था, कुछ करना नहीं है तुमको, सिर्फ खड़ा रहना है। तो मुझे कुछ करना नहीं, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। दूसरा आदमी आया, बहुत ही गरीब था, उसके पास सिर्फ 5 रुपए का कॉइन, रोते रोते बोला, भगवान मेरे पास यही है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हारी सेवा के लिए डाल रहा हूँ, मेरी मदद करो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो मदद करो। तो ऐसे बोलते बोलते जब उसने नीचे देखा तो ये अमीर आदमी का मनी पर्स पड़ा हुआ था, पूरा पैसा से लथपथ। तो उसने इमीडिएटली बोला कि आप तो कितने काइंड हो भगवान, मैंने अभी प्रार्थना किया, इमीडिएटली सॉल्यूशन रेडी। तो उसने मनी पर्स लिया और वहां से चला गया। तीसरा आदमी आया, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, बोले ठाकुर जी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तब तक क्या हुआ, ये अमीर आदमी वहां पे पुलिस लेके आ गया, बोला मेरा मनी पर्स गिर गया है, इस मंदिर में ही गिरा है, किसी ने तो लिया है, अब देखो कौन है। तो देखा कि ये आदमी भगवान के पास जो प्रार्थना कर रहा था, बोला अभी तुम मेरे पीछे ही लाइन में खड़े थे, तुमने ही लिया होगा, इसको पकड़ो और जेल में डालो। अब ये अमीर आदमी था तो जो बोलेगा पुलिस भी मानेगी, तो उस भक्त को पकड़ लिया। अब ये तो निस्वार्थ सेवा करने वाला भक्त था, तो जब उसको पकड़ के ले जा रहे थे तब हमारे डुप्लीकेट भगवान और चुप नहीं रह पाए, बोला बंद करो ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। सब लोग शौक कि भगवान खुद बोल रहे हैं, बोले ठाकुर जी बोलिए। तो बोलता कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैं बताता हूँ सच क्या है, इसका मनी पर्स इसने लिया है, जो गरीब है उसकी भी गलती नहीं है, उसने चोरी नहीं की थी, उसने सोचा था कि भगवान ने दिया होगा, तो उसका मनी पर्स उसको वापस दिला दिया, और इसको क्या किया है पुलिस के उससे उसको छुड़ा दिया, सबका सॉल्यूशन हो गया। रात को भगवान आए, बोला कैसे रहा तुम्हारा दिन, बोला वेरी हेक्टिक, इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉर्ट आउट किए। भगवान ने बोला, पर मैंने तुमको बोला था कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मत करना, तुमको सिर्फ खड़ा रहना है ऐसे करके, तुमने प्रॉब्लम क्यों सॉर्ट आउट किया। बोला लेकिन मेरे सामने अन्याय हो रहा है तो मैं कैसे देखूं, बेशक मैं डुप्लीकेट हूँ लेकिन डुप्लीकेट भगवान ही हूँ ना, तो गलत तो नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी ने बोला कि पर तुमने तो सब गलत ही गलत किया। तो बोला मैंने गलत क्या किया। तो ठाकुर जी ने बोला कि वो जो अमीर आदमी आया था जिसने अपना मनी पर्स भूल गया था, उसने इतने सारे गलत काम किए थे कि वो जरूरी था कि उसका पर्स वहां भूल जाए, सो दैट वो जो नेक्स्ट गरीब आदमी आया था अगर उसके काम में इसका पैसा लग जाता तो कुछ तो पुण्य कर्म इसके लिस्ट में ऐड हो जाते थे, इस अमीर आदमी के लिस्ट में, क्योंकि अभी वो मरने वाला है तो जब ऊपर जाएगा तो कम से कम कुछ तो अच्छे कर्म उसके लिस्ट में ऐड हो जाते थे। और ये गरीब आदमी जिसने वो मनी पर्स लिया था, अगर उसको आज पैसा नहीं मिलेगा तो भूख के मारे वो मर जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और ये जो निस्वार्थ भक्त जिसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, वो अभी क्या है, रोड क्रॉस करके बाहर जाने वाला था और उसका एक्सीडेंट होने वाला था और उसका पैर एक चला जाता था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा ना, तो मैं उसको बचाना चाह रहा था कि 2 दिन अगर पुलिस लॉकअप में रहता तो जो वो काल है, खराब काल, वो पास हो जाता था और वो बच जाता था। तो देखो तुमने सब कुछ गलत कर दिया। समझ में आ रही है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो हमारी आंखों को सही लगता है शायद वो सही है ही नहीं, शायद वो पूरा पूरा गलत है। भगवान के पास अपनी एक प्लानिंग होती है जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कृष्ण एक शरणम। तो यहाँ बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं कि द्रौपदी ने पूरा पूरा क्या किया, गोविंद दामोदर माधवेति। नेक्स्ट श्लोक, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैत भारे भक्तानुकंपीन भगवन मुरारे। रायस्व माम केशवलोकनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे मधु कैतव के बारे में बता रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपने मधु कैतव जैसे राक्षसों का वध किया है, काइंडली इस भक्त के पर भी आपकी दया दिखाइए। ओ केशव, ओ गोविंद, ओ दामोदर एंड ओ माधव। मधु कैतव की कहानी आप जानते हैं? नहीं जानते मधु कैतव की कहानी? मधु कैतव का जन्म कैसे हुआ था? भगवान के कान से, भगवान के कानों में जो मोम थी वो मोम से मधु कैतव का जन्म होता है। और फिर ये मधु कैतव का जब जन्म होता है तब वो समुद्र का पानी, जो जिस समुद्र में कैजुअल उसमें जब भगवान जहाँ पे सोते हैं उस समुद्र का पानी पी के वो जो है शक्तिमान हो जाते हैं। और फिर वो बहुत साल तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद लक्ष्मी देवी जो है प्रसन्न होकर उन्हें वर देती है। तो बोलते हैं आपको क्या चाहिए? तो मधु कैतव बोलते हैं कि हम अमर होना चाहते, इच्छा मृत्यु चाहिए। तो लक्ष्मी देवी उनको वरदान दे देती है। अब जब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाते हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, सबको तंग करना शुरू करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा के हाथ से चारों वेदों को लेके भागते हैं, ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं मेरी मदद करिए। तो फिर भगवान जो है हयग्रीव रूप में, माने घोड़े का जो है सिर और फोर हैंड्स फॉर्म में जो है वो भागते हैं मधु कैतव के पीछे और उनके साथ युद्ध करते हैं। और वो जो चार वेद वो लेके भागे वो ब्रह्मा को वापस देते हैं। लेकिन मधु कैतव को मार नहीं पाते क्योंकि लक्ष्मी देवी की कृपा है, उन पे आशीर्वाद है कि वो इच्छा मृत्यु ही मर सकते हैं। अब भगवान तो बहुत बुद्धिमान है तो एकदम विनयी होके मधु कैतव को बोलते हैं कि मुझे कुछ वर दीजिए, मैंने जो आपके साथ इतना सुंदर युद्ध किया मुझे कुछ वर दीजिए, आप तो मुझसे बहुत शक्तिशाली है। तो मधु कैतव अभिमानी थे तो बोला हाँ हाँ मांगो मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान को बोल रहे मांगो मांगो क्या चाहिए, मैं देता हूँ। तो भगवान बोले मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूँ। तो अब जब एक बार बोल दिया कि मांगो और जब मांग लिया तो बोला ठीक है तथास्तु, तुम्हारी तुमको हमारी मृत्यु चाहिए ठीक है। तो फिर जो है भगवान ये मधु कैतव का वध करते। ये मधु कैतव की जो कहानी है कल्कि पुराण में, महाभारत में, देवी भागवत में और श्रीमद् भागवतम में भी सेवेंथ कैंटो में आता है कहानी। आई थिंक एट चैप्टर, सेवेंथ कैंटो एट चैप्टर में जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को पैसिफाई करते हैं अलग अलग स्तुति के साथ में, तब वो एक लाइन में बोलते हैं कि भगवान आप हयग्रीव रूप में भी आते हो, वेदों की रक्षा करते हो। और उसी परपोट में श्रील प्रभुपाद मधु कैतव की कहानी बताते हैं। और श्रीमद् भागवतम टेंथ कैंटो 40th चैप्टर श्लोका नंबर 17-18 में भी जब अक्रूर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स ऑफ अक्रूरा बोल के एक चैप्टर आता है, अक्रूर की प्रार्थना में भी वो भगवान को हयग्रीव रूप में भी आप आए थे ठाकुर जी, ऐसा उनको जो है प्रार्थना करते हुए उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये मधु कैतव की जो कहानी है बहुत ही फेमस है बिकॉज देवर द फर्स्ट क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट बॉर्न आउट ऑफ विष्णु, ब्रह्मा के बाद में जो है। और इसका एक गहरा मतलब देखे तो ये भी है कि भगवान का ये जो नाम है मधुसूदन, माने जो मधु राक्षस का वध किया है इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। और एक श्रीधर स्वामी ने एक बहुत सुंदर इसका ये दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, वो कहते हैं कि क्योंकि भगवान मीठे हैं और मधु से भी ज़्यादा मीठे है, अगर मधु में हनी में और भगवान में प्रतियोगिता की जाए तो भगवान जीतेंगे, क्योंकि वो मधु से भी ज्यादा मीठे हैं। तो जो मधु को हरा देते हैं वो मधुसूदन है। और फिर श्रीधर स्वामी थोड़ा सा आगे आते हुए और गहरा मतलब बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में भी एक मधु है, सबके जीवन में, हमारे हृदय में एक मधु है, एक स्वीट सा कुछ है जो हमें बहुत प्यारा लगता है, वो है हमारा मिथ्या अहंकार। मैं कुछ हूँ, ये जो मेरा अहंकार होता है वो हमें प्यारा लगता है। आप कुछ भी ले लो हमसे, लेकिन हमारा अहंकार छीनो तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर एक गहरा मतलब ये भी है कि जिस तरह से तुमने जो है मधु को हरा दिया, उसी तरह से मेरे हृदय में ये जो मधु है, मेरा जो ये ईगो, ये जो मेरा फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, भगवान तुम इसका भी वध कर दो। इसलिए बोलते ना, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरे ये मिथ्या अहंकार को निकाल के फेंक दो। अगर आप देखो तो हमारी भक्ति जीवन में सबसे बड़ा अवरोधन तो मिथ्या अहंकार ही है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जप करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रसाद लेना प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र पढ़ना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अहंकार है। ये जो मैं हूँ, समथिंग, आई एम समथिंग, यही हमें डिस्टर्ब करता है। बाकी भक्ति जीवन में और कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। एंड दिस इज द वे टू प्रे टू द लॉर्ड, जिसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि जब आप ठाकुर जी के सामने जाके खड़े रहो तो ये चार चीज होनी ही चाहिए। पहले भगवान को प्रेज करो, उनको ग्लोरीफाई करो, उसके बाद में आप अपने बारे में बताओ भगवान को कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे में ये सारी बुरी आदतें हैं, और उसके बाद में भगवान से क्षमा मांगो कि मुझे क्षमा कर दो, इतने बार आपने मुझे चांस दिया, इतनी योनियों में मैं घूमता जा रहा हूँ, जन्म के बाद जन्म लेता जा रहा हूँ, लेकिन आपकी शरणागति में नहीं ले रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और फिर द फोर्थ वन, हमारा फेवरेट, भगवान को कुछ मांगना। हम पहले के थ्री स्किप, फोर्थ वन हम रेडी मांगने के लिए, जैसे ही दर्शन होता है भगवान को कुछ मांगो। लेकिन वो मांगना भी कैसा होना चाहिए, वो भौतिक मांगना नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक मांगना। जैसे यहाँ पे ये मांग रहे, जिस तरह से तुमने मधु सुदन, तुमने मधु का वध किया है, उस तरह से मेरे हृदय में भी जो ये मिथ्या अहंकार है तुम इसका वध करो। ये है सही पद्धति भगवान को प्रार्थना करने की। इसलिए जब हम कल परसों पूरी दर्शन, जगन्नाथपुरी दर्शन करके आए, तो जब हम जगन्नाथपुरी दर्शन करके भगवान का पूरी मंदिर से बाहर आ रहे थे, तब मैंने हर एक भक्त को खड़ा रखा, और भगवान के जो चक्र है, पूरी मंदिर का जो चक्र है, उसकी ओर देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए हर एक भक्त से मैंने ये करवाया कि तुम में जो बुरा गुण है, भगवान को बोलो इस गुण को मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ, मेरा ये गुण, मेरा ये जो बुरी आदत है उसको आप निकाल दो। पूरी मंदिर में अगर आप लोग गए हो तो आपको पता होगा इतना ज़्यादा रश होता है, कुछ भी कर लो आप एकदम क्रश हो जाओगे। तो हमारे ज्योति माता जी का स्पेक्स गिर गया, हमारे गीता प्रिय माता जी की चुन्नी गुम गई, कुछ ना कुछ तो सारे मुझे लिस्ट बता रहे थे नीचे उतरते उतरते सीढ़ियों में, माता जी मेरा ये गुम गया, माता जी मेरा वो गुम गया। मैंने बोला इधर आओ, तुम्हारा सही क्या घूमना चाहिए मैं बताती हूँ, अब खड़े रहो, देखो शिखर के ऊपर, अब बोलो भगवान चुन्नी गुम गई, ये गुम गई, ये भी यहीं गुम जाए, मेरा जो ये अहंकार है उसको भी आप घुमा दो यहीं कहीं। तो हर एक भक्त को पकड़ पकड़ के करवाया मैंने, बोला देखो शिखर की तरफ, जोड़ो हाथ और बोलो ठाकुर जी ये मेरा यही घूम जाए, मैं ढूंढता रह जाऊं कि कहाँ घूम गया मेरा अहंकार, बस पूरी में घूम के गुम कर दो, गुम करके आ जाओ, उसको छोड़ के उधर ही आ जाओ। ये है प्रार्थना करने का तरीका। जब भगवान के पास जाते हो तो कुछ ले लो भगवान से आशीर्वाद, और कुछ वहां छोड़ के आ जाओ। नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे हम लोग। विक्रे तु कामा के लगो पकन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। दध्यादिकं मोहवसादवोचात् गोविन्द दामोदर माधवेति। सी बिल्व मंगल ठाकुर जब ये सारे पद गा रहे हैं, उनको एक्चुअली सारी कृष्ण लीला दिख रही है। और ये पूरा अगर आप 71 श्लोक पढ़ो तो बहुत हैपहजार्डली है ये श्लोक, मतलब क्रम में नहीं है कि पहले बाल्य लीला उसके बाद में ये लीला, नहीं, उस मोमेंट में वो जो लीला देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बस उस लीला को वो लिख चुके हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गोपिका लोग हैं वो माखन दही घी ये सारी मटकियों में ढाल के जो है रास्ते में जो है मथुरा जाती है या कभी कभी कहीं और जाके है उसको बेच रही है। तो बिलो मंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो देखो ये गोपिका कितनी बावरी हो गई है, दही माखन ये बेचने के लिए जा रही है, दही माखन घी बेचने के लिए जा रही है, लेकिन वहां जाके क्या बोल रही है, ये लो कोई पाव के जी कृष्ण के ले लो, कोई पाव के जी दामोदर ले लो, ताजा ताजा माधव को ले लो। क्यों ऐसा बोल रही है? क्योंकि उनका माइंड पूरा माधव ने कैप्चर कर लिया है, अब उसके सिवाय और कुछ मन में बात ही नहीं आ रही है, बस मुंह खोलो तो उनका नाम आ जाता है, आंख खोलो तो वही दिखाई देते हैं, कान में बस वही सुनाई देते हैं और कुछ भी उनको सुनाई नहीं देता। और बिल्व मंगल ठाकुर ही नहीं, अगर आप देखो तो कितने सारे कृष्ण भक्त की भजन की रचनाओं में ये पॉइंट पक्का रहेगा कि जब गोपिकाएं माखन बेचती थी या दही दूध बेचने जाती थी तो वह ऐसे बोलती थी। जैसे हमारे गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता के एक भजन में वो ऐसे ही गाते हैं, भोली रे भरवाड़न हरि ने वेचवा चाली, सोळ सहस्र गोपी नो वालो मटकी मा धाड़ी, भोली रे भरवाड़न हरि ने वेचवा चाली, सेरिये सेरिये साड़ पाड़े लैलो मुरारी, भोली रे भरवाड़न हरि ने वेचवा चाली। क्या बोले, कितने भोली है ये, देखो नरसिंह मेहता बोलते हैं कि सोलह सहस्र गोपीनो वालो, 16,000 गोपी के प्रियतम कृष्ण को छोटी सी मटकी में डाल के बेचने के लिए जा रही है, क्या मान गोपिका है ये लोग। और सेरिये सेरिये साड़ पाड़े, मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में सुबह सुबह दोनकुरा पालकुरा दोनकुरा, सुबह जब मैं पहले नई विशाखापट्टनम में आई, सुबह सुबह हम पांडुरंगापुरम में रहते थे और सुबह सुबह हम लोग को इतना हंसी आता था कि क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे उतना तेलुगु समझ में भी नहीं आता था तब, और अनिरुद्ध बहुत छोटा था तो वो जैसे बोलते थे वैसे वो भी शुरू करता था, दोनकुरा पालकुरा भाई समझ में नहीं आता क्या बोल रहे। तो वैसे ये लोग भी साड़ पाड़े, मुकुंदा दामोदर गोविंदा ले लो ले लो ले लो, भगवान को बेच रहे हैं। और देखा जाए तो वो शायद भगवान को बेच भी सकते हैं, क्योंकि भगवान उनके है, जो चीज उनकी है वो बेच सकते हैं। हम जैसे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण मंगल ठाकुर हंस रहे हैं कि इतना परिश्रम गोपिका कर रही है लेकिन किसी के भी मुंह पे एक भी परिश्रम या थक गए या कुछ भी नहीं, सब आनंद से मुस्कुरा रहे। क्यों इतना मुस्कुरा रहे है? क्योंकि वो सब गा रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेती, भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसलिए उनको कष्ट नहीं लग रहा है, उनको बहुत आनंद आ रहा है। कचेत करम भोज पुते निशानम, क्रीड़ा सुखम किम सुख रक्त तुंडम, आध्यापयम् आश सरो रुहक्षी, गोविंद दामोदर माधवेति। अब एक विशेष गोपी के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे कि एक गोपी है जिसकी आंखें बहुत सुंदर है, कमल पुष्प जैसी है, उसके हाथों के अंदर में एक छोटा सा तोता है, वो तोता का जो डीक है चौच है वो लाल रंग की है, और ये जो गोपी है वो इस तोते को सिखा रही है, बोल रही कि ए तोते तुम बोलो गोविंद दामोदर माधवेति, वो सिखा रही है कि गोविंद दामोदर माधव ये सब नाम तुम बोलो। गृहे गृहे गोपवधू समूहा, प्रतीक्षणं पिञ्जरसारिकानां स्खालाङ्गिरं वाचयुतं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति। अब बिलमगल ठाकुर बोल रहे हैं, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गोपी नहीं जिसकी आंख कमल पुष्प जैसी है, सारी गोपियां अपने घर में, उनके घर में पिंजरा है, पिंजरे में तोते हैं, और सारी गोपिका है जो है तोतों को बोल रही है, भाई तुमको तो कुछ काम नहीं है, पिंजरे में बैठे हो, कम से कम बोलो गोविंद दामोदर माधवेति। बोले तुम लोग ऐसे बोलोगे तो कम से कम जब हम लोग काम करते रहेंगे तो हम भगवान का नाम सुनते रहेंगे। साधारण तो क्या होता है, जब कोई तोता वोता रखता है तो हमें ऐसी इच्छा होती है कि वो हमारा नाम सीखे, तो हमारा नाम बोले तो कितना प्यारा लगता है। लेकिन ये गोपिकाओं का भाव देखिए, वो तोते को भी बोलते भगवान का नाम बोलो तो कम से कम हम सुन पाए, क्योंकि हम एक मिनट भी हमारा कान कृष्ण का नाम सुने बिना नहीं रहना चाहते। पर्यांकिका भाजमलं कुमारं प्रश्वापयन्त्योखिल गोपकन्या जागो प्रबंधम स्वरताल बंधम गोविंद दामोदर माधवेति। अब ये गोपिकाओं में भी कुछ अविवाहित गोपिका है, कुछ विवाहित गोपिका है, कुछ बूढ़ी गोपिकाएं हैं, कुछ गोपिकाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, झूला में सुलाते हैं ना, तो जब झूला में सुलाते हैं तो क्या करना है, झूला को ऐसे ऐसे हिलाना है ना, जब झूला को हिलाते हो तो एक रिथमेटिक वॉइस आता है, तो बिल्व मंगल ठाकुर देख रहे हैं कि ऐसा ये जो रिदमेटिक वॉइस आ रहा है उसको बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे रखते हुए ये सारी गोपिकाएं अपने बच्चों को सुलाते हुए गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति रामानुजं वीक्षण केलिलोलम गोपी गृहत्वा नवनीत गोलम आवालकं बालकं अजुवा गोविंद दामोदर माधवेति। रामानुजम, राम मतलब बलराम, बलराम का अनुज मतलब कृष्ण। तो बिल्व मंगल ठाकुर बोल रहे हैं इतनी बदमाशी कर रहे कृष्ण, यहाँ वहाँ भाग रहे, गोपिया को गोपिकाओं को भगा रहे हैं, जब वो उनके साथ नहीं पारती है और पकड़ नहीं पाती है तब उनके पास एक ही ट्रिक है, माखन को लेके आते हैं, ऐसा बॉल जैसे बना के हाथ में रखते हैं और फिर बोलते हैं ए गोविंद ए दामोदर माधव चाहिए क्या माखन, और फिर कृष्ण अपने आप भागते हुए आ जाते हैं और फिर गोपिका उनको पकड़ लेती है। विचित्र वर्णा भरनाभिरामे विदेहि वक्त्रं भुजराज हंसे सदा मदीये रसना ग्ररंगे गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर अपने आप से बात कर रहे हैं, ओ मेरे मुंह, क्योंकि तुम भगवान का नाम ले रहे हो इसलिए तुम एक कमल पुष्प के जैसे तैयार हो गए हो, और मेरी जो जिह्वा है वो तुम्हारे अंदर में खेल रही है जिस तरह से एक राजहंस पानी में खेलता है, तो हे मेरी जिह्वा, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम सब समय गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। अंकाधिरुद्धं शिशुगोपबुद्धं स्थानं धयन्तं कमलेककान्तं संबोधयं आशमुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। आप बोल रहे हैं कि ठाकुर जी यशोदा माता के लैप में बैठे हुए हैं और स्तनपान दूध पी रहे हैं, और उतना टाइम भी यशोदा माता अपनी आंखों से भगवान का दर्शन तो कर रही है लेकिन अपने जिह्वा से भी भगवान का नाम गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। क्रिदन्तमन्तर्व्रजमात्मनां स्वां समान्वयास्या पशु पाल बाले प्रेम्णा यशोदा प्रजुहाव कृष्णं गोविन्द दामोदर माधवेति। यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर देख रहे हैं कि भगवान अपने एज के बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, तो यशोदा माता उनको बुला रही है कि हे कृष्ण आओ। वो दूसरे बच्चों के साथ जो उनके साथ में गाय चराने जाते हैं उसी एज के बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं, लेकिन यशोदा माता उनको घर में वापस बुला रही है। तो अलग अलग नाम से वो बुला रही है, गोविंद दामोदर माधवेति यशोदया गाधमुलूखलेना गोकांत पाशेन निबाध्यमानं रुरोदमंडं नवनीत भोजी गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे वो दामोदर लीला देख रहे हैं, तो बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं कि वो जो उलूक उलूक है जिसमें जो भगवान को बांध दिया है यशोदा माता ने रस्सी से, भगवान की आंखों में से जो है अश्रु निकल रहे हैं और आसपास के सारे जो है भगवान की तरफ देख के मतलब उनको टीज कर रहे हैं, और वो भी यही गा रहे गोविंद दामो धर माधवेति निजंगने कं कनके लीलोलम गोपी गृहत्वा नवनीत गोलम आमर्दयत् पाणितले नेत्रे गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि ठाकुर जी कंगन से खेल रहे हैं। बच्चे लोग कभी कभी कंगन वगैरह से जब खेलते हैं तो कभी कभी उनको लग भी सकता है, तो अगर हाथ से छीन लेंगे तो वो रोने लगेंगे मेरे हाथ से क्यों छीन रहे। तो किसी एक गोपिका ने क्या किया, पीछे से आके भगवान की आंखें मीच ली। अब जब आंखें मूच दी भगवान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर गोपिका बहुत प्यार से पूछती है, बोलो कान्हा तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आई आज, गेस करो क्या लेके आई हूँ। अब क्या लेके आने से भगवान खुश होते हैं, माखन। तो वो बोलते कि माखन लेके आई हो क्या, तो बोलते हाँ। तो जैसे वो ऐसे बोलते भगवान जो है वो कंगन छोड़ देते, तो फिर उसको माखन देते हुए पीछे से वो कंगन वो लोग छुपा देते हैं, जैसे बच्चों को जैसे करते हैं माए। यहाँ सुंदर बात ये है कि भगवान हमेशा माखन के बात सुन के मान जाते हैं। आप ये घर जाके अपने बच्चों के साथ कोशिश करो, मैं क्या लेके आए माखन, मैं क्या लेके आए माखन, दो दिन के बाद बोलोगे आप ही खाओ माखन। आईपॉड आईपैड के बारे में कुछ बात करो तो है माखन लेके आए, रोज माखन लेके आए, मेरे को क्या करना है माखन का। लेकिन ये तो भगवान की सुंदरता है ना, रोज माखन से वो खुश है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा माखन आप जो लेके आए हो भगवान उसका प्राइस टैग देखते ही नहीं है, ये कितने का है वो नहीं देखते, प्राइस टैग तो हमारे बच्चे देखते हैं कितने का लाए, ब्रांडेड है कि नहीं, नाइकी है कि एडिडास है, नहीं तो उसके बारे कोई बात ही नहीं। तुम क्या लाए हो उसका कॉस्ट कितना है। आप किसी के भी बर्थडे पार्टी में चले जाओ, शादी में चले जाओ, पहले गिफ्ट का प्राइस टैग देखेंगे। ओनली पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड जो प्राइस टैग नहीं देखता है वो है ठाकुर जी, वो सिर्फ इतना ही देखते तुम भाव से लाए हो या क्या, भाव से लाए हो क्या, प्रेम से लाए हो क्या, एक्सेप्टेड। भाव से तो सबरी के बेर भी भगवान ने ले लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबरी के जूठे बेर भी भगवान ने खा लिए, लेकिन हम जो 500 रुपए के जी ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स लाते तो भी भगवान नहीं खाते क्योंकि उसमें भाव नहीं है, और सबरी के जूठे बेर भी भगवान ने खा लिए। तो भगवान तो भाव देखते, प्राइस टैग नहीं देखते। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलत्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। बोल रहे कि जब भी कोई उत्सव होता है गोकुल में वृंदावन में, जब भी कोई उत्सव होता है बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, तब पूछते हैं कि आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी, बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं पूछते हैं। वो इतना ही बोलते कि गोविंद दामोदर माधवेती, जब भी मिले कुछ भी हो वो गोविंद दामोदर माधव के सिवाय उनकी वोकैबुलरी में और कोई शब्द नहीं है, ना किसी और बात में उनका कोई इंटरेस्ट है, ना उनका कोई मन है। बात करोगे तो गोविंद की बात करो, अदरवाइज कोई बात मत करो। मंडार मूले वदनाभिरामम बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमाद्य संस्तम गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनके बिंबा फल जैसे होठ है, बहुत सुंदर आंखें हैं, कोरल ट्री के नीचे वे खड़े हुए बंसी बजा रहे हैं और इतना मधुर वातावरण बन गया है। उठाय गोप्यो पर रात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुत बालकेलिम गायन्ति प्रोचे दधि मन्थयन्त्यो गोविंद दामोदर माधवेति। जैसे गोपिका लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई है तो अब वो क्या कर रही है, सब लोग जो है माखन बनाने के लिए छाछ का मंथन कर रही है और मंथन करते करते भी वो क्या कर रही है, गा रही है। क्या गा रही है? गोविंद दामोदर माधवेति जगदोथ दत्तो नवनीत पिंडो गृहे यशोदा विचिकेत सयन्ति उवाच सत्यं वदहे मुरारी गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार यशोदा माता जब छाछ का मंथन कर रही थी तब उन्हें याद आया कि मैंने फ्रेश माखन अलग से रखा हुआ था कुछ और काम के लिए, तो कहीं गोविंद ने वो माखन खा तो नहीं लिया, तो सस्पिशियस माइंड से वो किचन की ओर जाके ढूंढ रही है कि मैंने यहीं रखा था कहीं उन्होंने ले तो नहीं लिया। और जब वहां जाके देखा कि वो माखन नहीं है तब वो अपने मन को मतलब मन मन में बोल रही है कि किसने खाया है ये, गोविंद दामोदर माधवेति अभ्यार्च गेहम युवती प्रवृद्धा प्रेमा प्रवाह दधिने ममंथा गायन्ति गोप्यो तसखी समेता गोविंद दामो धर माधवेति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गोपिका अपने अपने घर में तो दही के मंथन करती है लेकिन वो जल्दी जल्दी करके अपनी दूसरी गोपिकाओं फ्रेंड्स के साथ में काम करना चाहती है, क्योंकि जब वो लोग साथ में मिलते हैं तब गाने में आनंद आता है। क्या गाने में? गोविंद दामोदर माधवेति क्वचित् प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे निक्षेप्य मंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गानम विविधम करोति गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपिका के बारे में बता रहे थे कि गोपिका जब सुबह सुबह उठी, सपने में भी भगवान ही आते हैं गोपिका को, तो सपने में भी भगवान से ही बात करते रहते हैं, उठने से भी भगवान का गान करते हैं, तो इस बार जब सुबह उठी तब उसने उसके मन में निश्चय किया कि ये गोविंद दामोदर माधव मेरा माइंड पूरा पूरा ले लेता है, काम में मन लगता ही नहीं है, आज मैंने सोच लिया मैं उसको याद नहीं करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी। तो एकदम उसे सोचा मुझे नहीं याद करना है गोविंद को, मुझे नहीं याद करना है, मुझे मेरा काम करना है। तो डाला उसने दही और मंथन करने के लिए बैठी, मुझे और कहीं नहीं देखना है और कहीं नहीं सोचना है। और जैसे मंथन करते करते आंख थोड़ी सी उठाई तो स्तंभ के पीछे से भगवान उसको ऐसे ऐसे कर रहे, तो बोल रही गोविंद दामोदर माधवेति, तुम नहीं छोड़ोगे, हर जगह तुम दिखाई देते हो, मैं करूं तो क्या करूं। कृदा परम भोजन माजनार्थम हिताशिनी स्त्री तनुजम यशोदा अजूहवत् प्रेम परिप्लुतक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान एक बार ना नहाए हैं ना खाए हैं, खेल रहे हैं, तो यशोदा उनको डांट रही है कि हे गोविंद, ना तुमने सुबह से नहाया है ना तुमने कुछ खाना खाया है, बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, तुम वापस आओ। लेकिन वो बिल्कुल माँ की बात नहीं सुन रहे और भी खेल रहे, और यशोदा माता बस चिल्ला रही है हे गोविंद दामोदर माधवेती, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, घर वापिस आओ, खाना खा के खेलो। ऐसे जैसे माए बोलती है कि खाना खा लो फिर खेलो जितना भी खेलना है। सुखम शयानम निलये च विष्णुम देवर्षि मुख्या मुनया प्रपन्ना तेनाच्युते तन्मयतम व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलते हैं देवर्षि नारद और सारे मुनि सब लोग जो है भगवान आपका ये नाम ले रहे हैं। क्यों? बिल्व मंगल ठाकुर जैसे मैंने बताया, क्रम में कोई लीला नहीं बता रहे, बस उनको जो जब दिखाई दे रहा है बता रहे। तो अब वो ये बोले कि देवर्षि नारद है, सारे डेमीगॉड्स जो है, मुनि है, ऋषि है, ये भगवान मैं तो देख रहा हूँ सब, और सारे और सब क्या कर रहे हैं, एक ही नाम गोविंद दामो उधर माधवेति विहाय निद्रम अरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपथन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। तो सुबह सुबह सारे ब्राह्मण लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, अपना नित्य क्रम पूरा करते हैं, जो भी वेद पाठन करना है सब कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी करने के बाद उनका एक ही उत्साह रहता है कि हम कब गाएंगे गोविंद दामोदर माधवेति वृंदावने गोपगणश्च गोप्या विलोक्य गोविंद वियोग खिन्नम् राधम जगुषाश्रु विलोचनाभ्यम गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार वृंदावन में गोपिकाओं ने देखा कि राधा रानी रो रही है, रासलीला के बीच से कृष्ण चले गए और राधा रानी उनके सेपरेशन में रो रही है। तो अब गोपिका लोग सोच रही है कि राधा रानी को चुप करे तो कैसे चुप करे, तो उनको याद आया अरे राधा रानी को चुप करने का एक ही तरीका है, गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। आज गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र यही खत्म करेंगे, आने वाले संडे इसको कंटिन्यू करके पूरा 71 कंप्लीट हम लोग करेंगे। आज हम लोग यही खत्म करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा।